ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷா வாசியோபனிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமினி சந்தோஷி மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
இஸ்மே பி கோய் ஹர்ஜ் நீ, இஸ்லியே அப்னே மன் கோ குஷ் ரக்னா, சதத் பிரசன்ன ரக்னா. बोले ये प्रसन्नता किससे होगी, मन की प्रसन्नता किससे होगी? मन प्रसन्न कभी भोगों से नहीं हो सकता. ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि भोगों के द्वारा मन प्रसन्न होगा. मन प्रसन्न भोग से नहीं होता. पहले विचार करो कि ये मन है क्या चीज. बोले मन भोग से प्रसन्न नहीं, मन तो भजन से प्रसन्न होगा. क्योंकि मन हमेशा किस चीज को चाहता है, किसको खोजता है? मन को रस चाहिए, रस. मन जहां उसे रस मिलता है वहीं दौड़ता है, वहीं दौड़ता है. जैसे भौरे को मधु चाहिए, वैसे ही इस मन की का जो आकर्षण है वो किसकी ओर है? बोले रस की ओर है. और रस है कहां? बोले रसो वेश, रस तो केवल परमात्मा में है. परमात्मा का, या ये कह दे कि ये सहजाती आकर्षण, जो वस्तु सहजाती होती है वो सहजाती के साथ मिल जाती है. मिश्री की डली बहुत कड़क है पर पानी में जाते ही मिल जाती है. क्यों? कि वो कठोर होती हुई भी जल की सहजाती है. तो मन का जो सहजातीय धर्म है, सहजातीय, तो वो किस रसो में सा परमात्मा है. इसलिए ये मन जब कभी भी मिल सकता है तो केवल भगवान से मिल सकता है. संसार से कितना इस मन को मिलाकर एक रस करना चाहो, ये संसार में कभी मन एक रस हो ही नहीं सकता है. संसार अलग होगा, मन अलग होगा. माने संसार से मन हटता ही रहेगा. जैसे भौरा फूलों को बदलता रहता है, वैसे मन अपने लिए नवी नवी नया 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 विषय ढूंढता ही रहेगा. और ईमानदारी के साथ हम लोग दौड़ रहे हैं किसकी ओर? नवीनता की ओर. हमें नया कुछ खाने को चाहिए, हमें नया कुछ कपड़ा चाहिए, नया कुछ आभूषण चाहिए, नया कुछ मनोरंजन चाहिए, कुछ नया. एक बार मैं एक पत्रिका में पढ़ रही थी, यूरोप की कोई घटना थी कि एक व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया, मार दिया, और उसको वो पकड़ा गया. उससे पूछा गया कि भैया तूने इसका खून क्यों किया? तो उसने उत्तर दिया कि मैं सब कुछ कर डाला पर मैं ये जानना चाहता था कि खून करके क्या होता है, कैसा महसूस होता है नए के होड़ में. उसके लिए और काम कोई नया बाकी बच नहीं गया था, केवल किसी को मारना ही बच गया था. और वो मार करके उसके बाद उसकी क्या फीलिंग उसके अंदर आती है, क्या महसूस होता है, इसलिए मैंने किया. तो कहने का अर्थ ये था कि हम नवीनता की होड़ में दौड़े और इससे सोचते हैं कि बस. पर याद रखना, संसार के जितने भी विषय हैं ये धीरे धीरे वासी पड़ते हैं, बूढ़ापन इनमें आता है, जीर्णता आती है. इसलिए नित्य नवीनता यहाँ नहीं है. नित्य नव नव रंगी, सरल तरंगी, अर्थात नित्य नूतन रस, नूतन आनंद तो किसमें है? बोले रसो मय परमात्मा है, परमात्मा में ही रस है, आनंद वही. इसलिए मन जब कभी भी एक रस होगा, रस का अनुभव करेगा, तो वो केवल परमात्मा से इसलिए मन मिल सकता है. तो भजन क्या है? किम नामम भजनम, रसम नामम भजनम. रस का नाम भजन है. रस लेना, परमात्मा का गुण कीर्तन करके रस लेना, आत्मा स्मरण करके उसका रस लेना, आत्मानुचिंतन करके उसका रस लेना, आत्मा का चिंतन कर, आत्मा के संबंध में विचार करके उस स्वस्वरूपा रसानुभूति करना, उस रस का आनंद लेना, वो भजन है नारायण. इस प्रकार मन प्रसन्न होगा, आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी जब कभी भी, वो केवल भजन से आएगी, भजन से आएगी. तो भगवान का भजन करो या आत्मा का भजन करो, बात एक ही है। इसलिए आत्म तत्व का विचार करने वाले विचारवान पुरुष वो आत्मानुचिंतन करते हैं, आत्मानुचिंतन करते हुए उसमें से रस की अनुभूति करते हैं, आनंद की अनुभूति करते हैं, उससे उनका मन प्रसन्न रहता है। और दूसरी बात मैंने आपको कही, चित्त वृत्ति निरोधानाम योग, योग का मतलब क्या होता है, चित्त की वृत्तियों को निरोध करना। और चित्त की पांच प्रकार की वृत्तियों में एकाग्र वृत्ति को ही श्रेष्ठता दी है। तो जहां चित्त की वृत्ति एकाग्र होती है, एकाग्रता बने भीतर में, तो समझना कि बस एकाग्रता, एकांतता, वो एकांत का जो सुख है परम आनंद है। जहां एकांत है वहां मौन है, खटपट नहीं है, वहां किसी प्रकार की अशांति नहीं है। इसलिए आत्मीय जो अवस्था बताई गई है वो मौन की बताई गई, परम सुख की, अर्थात भीतर के चित्त का द्वंद समाप्त हो गया हो। और ऐसी जो मौन अवस्था है आत्मा के सुख के अनुभव की, वो स्थिति हमारे भीतर बने। योग का मतलब आज हमने केवल इतना कर लिया, शरीर को घुमा लेना, आसन आदि कर लेना, वो योग का एक अंग है। शरीर को भी ठीक रखना चाहिए, शरीर को नकार करके आप, इस शरीर का तिरस्कार करके, इसका निरादर करके उस सुख को प्राप्त करना चाहे, बोले वो बात नहीं है। इसलिए इस मामय अनुपाल, इसकी भी अनुपालना करनी चाहिए, इसकी भी रक्षा करनी चाहिए, इसका धर्म, क्योंकि इसी से हमें ये सुख प्राप्त होगा। तो सही उसको ठीक रखने के लिए योग आसन करें, प्राणायाम करें, वो उसका एक अंग है। पर योग का मतलब केवल आसन प्राणायाम ही नहीं है, उसको शरीर को ठीक करना ही नहीं है। इसलिए चित्त की वृत्ति को का निरोध करना, वो भी जब योग करता है तो हो जाता है, ये कह सकते हैं। और तीसरी जो बात है, बुद्धि में समता आए, बुद्धि सम रहे। वो सम तो बुद्धि तभी रह पाएगी नारायण, जब बार बार आप शास्त्र का विचार करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, सत्संग करेंगे। इसके लिए जब तक सत्संग परम अनिवार्य है, परम अनिवार्य। सत्संग का मतलब केवल इतना ही, बुद्धि को सम रखने के, राग और द्वेष से बुद्धि को निष्पक्ष करने के लिए सत्संग ही एकमात्र परम साधन है। तो सत्संग को केवल इतना ही न समझे हम कि हम लोग ये सोचते हैं सत्संग बस यही है, किताब ले बैठे, उपदेश प्रवचन सुनने को मिले, वो सत्संग। सत्या सत्य माने सत्य का संग, अपनी बुद्धि को सत्य से विचलित न होने दे, सत्य के संग जोड़े रखे। सत्य क्या है, बोले आत्मा, और उस आत्मा के साथ जिसे हम परमात्मा भी कहते हैं, उसके साथ बुद्धि बनी रहे, उससे हटे नहीं, इसीलिए उसे कह देते हैं ईश्वर बुद्धि। गीता में भगवान ने बहुत अच्छा उपदेश दिया, योगस्तु कुरु कर्माणि संगत्वा धनंजय सिद्धयो असिद्धयो समो भूत्वा समत्त योग मुच्यते, कि जीवन में हमें कैसे चलना चाहिए। बोले ईश्वर बुद्धि रख करके, योगस्तु कुरु कर्माणि, योग युक्त होकर, ईश्वर बुद्धि होकर रखकर कर्म करते हुए, योगस्तु गुरु कर्माणि संगत्वा धनंजय, की समस्त आसक्ति को सिद्धयो असिद्धयो समो भूत्वा समत्त योग मुची, यही समत्त योग है। अपनी बुद्धि में सफलता और असफलता की ओर न जाकर ईश्वर बुद्धि रखना, सर्वथा ईश्वर बुद्धि बनाकर। बहुत से लोग कहते हैं देखो कुछ प्राप्त होगा तो ये बस हमने मेहनत करके अपनी बुद्धि से ये हमने उपार्जन किया। मैं हमेशा कहती हूँ ये कहते हैं कि हमने ये अपनी बुद्धि से हमने उपार्जन किया, ये हमने अपनी बुद्धि से प्राप्त किया। परंतु याद रखना नारायण केवल बुद्धि से मिलने वाला होता है ना, केवल बुद्धि से ये सब कुछ हासिल होने वाला होता तो मैं सोचती हूँ ब्राह्मणों से ज्यादा बुद्धि किसी के पास नहीं होती। ब्राह्मणों के पास बुद्धि बहुत होती है पर ब्राह्मण प्रायः ये सब प्राप्त नहीं दिखाई पड़ते हैं। और यहां तक तो है, मैंने पढ़ा से द्रोणाचार्य बहुत बड़े पंडित थे पर उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी। सुदामा बहुत बड़े पंडित थे, इंद्रिय निग्रह थे, सत्यवान थे, निष्ठावान थे, परंतु उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी। तो ब्राह्मण धनी हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बुद्धि से ही मिलने वाला होता तो। और बहुत से लोग कहते हैं बुद्धि के साथ ये मेरा परिश्रम है, ये मेरा श्रम है। यदि श्रम से ही मिलने वाला होता तो मजदूर सबसे ज्यादा करता है। तो ये इसलिए समझना कि ये ना हमारे परिश्रम से मिला न ये हमारी बुद्धि से मिला। यदि इसे तुम भगवान की कृपा समझ लोगे, बड़ों का पूर्वजों का आशीर्वाद मान लोगे तो निर अभिमानी रहोगे। ये भगवान की कृपा है और इस कृपा को अनुभव करने के लिए, उनकी इस कृपा का अनुभव करने के लिए हमारी बुद्धि यदि ईश्वर युक्त रहे, ईश्वर बुद्धि ईश्वर को आधार बना करके। आप सागर मंथन की कथा भागवत में सुनते हैं, देवता असुरों ने जब तक भगवान को आधार नहीं बनाया, उनका परिश्रम भले ही वो सागर मंथन करने का हो, कोई छोटा कार्य नहीं था, इतना महान कार्य, और जिसमें मंद्रांचल पर्वत को मथानी बनाकर वो मन ने जार थे, परंतु भले ही वो कार्य कितना ही महान था परंतु वो सारा परिश्रम उनका व्यर्थ जा रहा था जब तक उन्होंने भगवान को आधार नहीं बनाया। जैसे कुर्मार हार लिया, भगवान का स्मरण किया, भगवान ने कुर्म बनकर अपनी पीठ का आधार दे दिया तो उसका परिणाम निकल के सामने आना आरंभ हो गया। याद रखना जब तक अपना आधार ईश्वर को नहीं बनाओगे, ईश्वर बुद्धि हुए बिना बुद्धि कभी निष्पक्ष नहीं हो सकती। ईश्वर बुद्धि करने के बिना होने के, जब तक ईश्वर बुद्धि नहीं होगी तब तक बुद्धि निष्पक्ष नहीं होगी। या तो वो राग के साथ जुड़ जाएगी या द्वेष के साथ जुड़ जाएगी। राग के साथ पकड़कर पास लाना चाहेगी और द्वेष के द्वारा दूर फेंकना चाहेगी। और जिन्हें राग से पकड़कर पास लाएंगे उन्हें मित्र समझने लगेंगे, जिसे दूर फेंकने लगेंगे उन्हें दुश्मन समझने लगेंगे। बुद्धि कहीं दुश्मन और दोस्त दिखाने लगेगी और कहीं अपना और पराया दिखाने लगेगी, कहीं घृणा और नफरत दिखाने लगेगी। ये द्वंद्व आ जाएगा नारायण, ईश्वर बुद्धि होने पर ही बुद्धि सम रह सकती है और वो सम बुद्धि ही आत्मदर्शन कराने के योग्य है। उस सम बुद्धि से ही अभेद दर्शन हम कर सकते हैं। सम्बुद्धि हुए बिना अभेद आत्मदर्शन हमें प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए सतत ईश्वर बुद्धि रखते हुए अध्यात्म हमें यही कहती, ब्रह्म विद्या हमें ये सिखाती कि किसी के साथ अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुण एवच। भगवान कहते हैं कि पहली बात तो ये है, मेरा भक्त सच मे प्रिय, मुझे कौन प्यारा है। आप लोग 12वां अध्याय हर संडे को पढ़ते हैं, एकादशी को भी पढ़ते हैं, पाठ करते हैं उसका। तो उसमें दो तरह के भक्त भगवान ने बताए, एक भक्त वो जो मेरे को प्राप्त करना चाहता है और दूसरा भक्त वो जिसे मैं चाहता हूँ, मैं जिसको प्यार करता हूँ। ये बड़ी बात है कि हम भगवान को प्यार करें या ये बड़ी बात है कि भगवान हमें प्यार करें। भगवान हमको प्रेम करें, भगवान किसे प्रेम करते हैं उन्होंने पहली शर्त रखी। 13वें श्लोक से लेकर के 20वें तक देखना, पहले श्लोक में ही भगवान ने क्या कहा कि पहली बात पहली अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, मेरा भक्त किसी के साथ द्वेष नहीं करता। और यह उपनिषद कहती है द्वेष तो जहां घृणा होगी वहां द्वेष होगा। आत्मदर्शन करने वाला अभेददर्शी ज्ञानी, आत्मदर्शन करने वाला कभी किसी के साथ घृणा नहीं करता, हटाता नहीं, परे परे अर्थात ये नहीं। घृणा से अभिप्राय ये जो जगत है, यहां घृणा से जो तात्पर्य है वो इस संसार से ये सब मिथ्या है मिथ्या है मिथ्या ऐसे करके घृणा नहीं करता है। सर्वभूत आत्मदर्शन करने वाला वह इससे घृणा करके परहेज नहीं करता, ये झूठा झूठा गलत है इत्यादि। अर्थात वो सब में पंचभूतों में ये यहां जो सर्वभूत में माने ये जो कुछ भी हमें दिखाई पड़ रहा सब में आत्मा का दर्शन करता है और किसी के साथ वो घृणा नहीं करता, यानी किसी से उसको परहेज नहीं है, वो उसमें असंग होकर अपने को भिन्न अपना ही स्वरूप देखते हुए। मुझे स्मरण हो रहा है उड़िया बाबा जी महाराज से वृंदावन में किसी ने पूछा, महाराज जी एक बात बताओ कि आप, उड़िया बाबा जी महाराज बड़े आत्मनिष्ठ बड़े महापुरुष थे, प्राय महाराज श्री उनका बहुत जिक्र किया करते थे। ये सौभाग्य का विषय है मेरे लिए कि मुझे उड़िया बाबा जी के आश्रम में, महाराज जी शाम को रोज 4 बजे वहां सत्संग करने जाया करते थे, तो एक मैं भी वृंदावन गई हुई थी, तो पूज्य महाराज श्री के सत्संग के बाद वहां सत्संग करने का और बाबा जी के आश्रम में जाने का देखने का उनका सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। तो महाराज श्री वहां जाके प्रवचन कर रही थी तो कहते हैं अब फ्रंटियर चलने वाली है, बहुत तेज तेज बोलती थी, मतलब जल्दी जल्दी। तो महाराज जी कहते थे जिनको इस ट्रेन में सफर करना हो उसे जल्दी जल्दी तैयार होना पड़ेगा, बहुत तेजी से बोलती थी। तो उड़िया बाबा जी महाराज का संस्मरण मुझे स्मरण हुआ था कि उनसे किसी भक्त ने पूछा, महाराज जी आप जो दिखते हैं वो ब्रह्म है या आप जो महसूस करते हैं वो ब्रह्म है, ब्रह्म कौन है, आप जो दिखाई पड़ रहे हैं अर्थात जो शरीर से जैसे आप दिख रहे हैं कि वो ब्रह्म है या आप जो महसूस करते हैं वो ब्रह्म है। महाराज जी ने कहा कि बात ये है तुमको मैं क्या देखता हूं, तुमको मैं क्या देखता हूं वो तुम्हारा अनुभव है और मेरा मैं कहा, महाराज आप तो फिर अद्वैतवादी हैं। उन्होंने कहा कि मैं अद्वैतवादी नहीं हूं, मैं अद्वैत स्वरूप हूं, मेरा क्या अनुभव ब्रह्म में, अर्थात मैं ब्रह्म हूं और मैं ब्रह्म स्वरूप, अपने स्वरूप का अनुभव करने वाले संत का ये अनुभव है कि वह अपने आत्म स्वरूप में वो, मैं अद्वैत वाद विवाद तो बाद की बात है नीचे की बात, मैं वादी नहीं हूं, मेरा कोई किसी से मेरा कोई वादी नहीं है, मैं तो अद्वैत स्वरूप हूं। तो कहने का अभिप्राय ये था कि आप मुझे ब्रह्म देखते हैं, जो देखने वाले की दृष्टि है वो अलग है और संत अपनी दृष्टि से क्या देखते हैं, वो अपने वो तत्ववेता आत्मवेता वो ज्ञानी वो महापुरुष वो संत सब में केवल एकमात्र आत्मा के अतिरिक्त, जैसे एक्सरे की मशीन हमारे कपड़े और त्वचा को पार कर हड्डी के भीतर चली जाती है एकदम, उसी तरह से उनकी अभेद दृष्टि न नाम में अटकती है न रूप में अटकती है, नाम रूप को पार करती हुई जो तत्व है उस तत्व से भरी, तत्व रूप जो स्वयं है वो उसका अनुभव करती है, अपना ही अनुभव करती है। इसलिए महापुरुष की दृष्टि में भिन्नता है ही नहीं, अनेकता है ही नेह नानास्ति किंचिनम, वहाँ ये सब ये पंचभूत है, ये पंच तन्मात्राएं हैं, ये प्रकृति है, इस प्रकार का कोई भेद नहीं है। वो सब में सब में सब में केवल एक आत्मा का दर्शन करता हुआ जैसा जो जैसा चल रहा है, वो मैंने प्रथम मंत्र में कहा था आत्मा कुछ निर्माण नहीं करती है, जो जैसा है उसको वैसा प्रकाशित करती है, जो जैसा है वैसा दिखाती है। ज्ञान का अर्थ कुछ निर्माण नहीं होता। उड़िया बाबा जी से ही एक ने प्रश्न किया, महाराज जी एक बात बताओ, भक्ति बड़ी है या ज्ञान? तो स्वामी जी हमेशा ब्रह्मचर्चा करते थे, ब्रह्मचिंतन करते थे, और वो तो वृंदावन में रहते हुए भी कभी उन्होंने नाम रूप का कोई चिंतन नहीं किया, उनका चिंतन तो केवल ब्रह्मानुचिंतन था। तो एक बार किसी ने उनसे पूछा कि महाराज जी भक्ति बड़ी है या ज्ञान, तो उन्होंने उत्तर दिया कि भक्ति बड़ी है। तो जो उनके नित्य के सत्संगी थे, श्रोताजन थे, महात्मा लोग महाराज श्री के मुखारविंद को देखने लगे, बाबा जी की ओर देखने लगे, तो बाबा जी ने कहा हाँ हाँ भक्ति बड़ी है। तो उसका अर्थ ये था कि ज्ञान में तो बड़ा छोटा कुछ है ही नहीं, ज्ञान में कोई, ज्ञान किसी को बड़ा नहीं बनाता है, ज्ञान किसी को छोटा नहीं करता, परंतु सबको बड़ा बनाने वाली, अयोग्य को योग्य करने वाली, अपात्र को पात्र बनाने वाली, असमर्थ को समर्थ कर देने वाली जो है वो तो भक्ति है। ये महान कार्य तो भक्ति का है। ज्ञान तो जो जैसा है उसमें कोई निर्माण विभाग नहीं है, कुछ अपनी ओर से बना करके प्रस्तुत करती हो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए जो स्वस्वरूप को जानने वाले महापुरुष हैं, वो तो केवल अपने स्वरूप में सबका दर्शन करते हुए वो कुछ बनाते नहीं है, कुछ बनाकर प्रस्तुत नहीं करते हैं, जो जैसा चल रहा है उस पर उनके साथ वो असंगता से आत्मीय भाव से दर्शन करते हुए सर्वात्म भाव के साथ, उनको किसी के साथ कोई घृणा नहीं है, अर्थात प्रकृति के किसी भी किसी चीज से उनका कहीं कोई निषेध नहीं है, नकारते नहीं है। ये वो तत्वदर्शी आत्मवेता पुरुष का लक्षण है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे 6 मंत्र तक पहुँचे हैं, और आगे की चर्चा अगले साल जब आऊंगी तो तब जैसी भगवान बुद्धि देगा। मेरी कोशिश ये रहती है कि ये स्थान सत्संग का है, आप लोग करते हैं, पर प्रश्न ये है कि कहीं से प्रयास यही है कि किसी तरह से भी कोई भी बात कितनी सरलता से आपके तक पहुंच जाए, ताकि उसे सहज रूप, वेदांत को बहुत क्लिष्ट कर दो ना तो वैसे ही लोग कहते हैं ये तो बहुत बड़ी चीज है, और वो ऊपर ऊपर से निकल जाते। वेदांत सहज और व्यवहारिकता में, हमारे जीवन के साथ, हमारी सहजताओं के साथ और सहज रूप से ये मिठास, ये मधुरता हमारे जीवन में उतर आए, हमारे आचरण में उतर आए और हमारे कार्य क्षेत्र में उतर आए, इसे वो बना करके रखें इतनी सहजता के साथ, और अपने आत्म जीवन के, अपने आत्म स्वरूप की निरंतर आत्मानुचिंतन करें, अपने आप पर विचार करें। देखो नारायण, बात तो केवल इतना ही है, कहना किसे, सुनाना किसे, समझाना किसे, बताना किसे, सिखाना किसे, सिखाने के लिए, बताने के लिए, सुनाने के लिए, समझाने के लिए यदि कोई हमारे पास है तो सिर्फ अपना मन है। मन से कहना है मन को समझाना है, मन को सिखाना है, मन को बताना है, मन को चलाना है, मन की संभाल करनी है। मन को जिसने अपने मन को ठीक से समझा दिया, बता दिया, संतों ने कभी प्रयास नहीं किया कि वो जगत को बताए, जगत को सुनाए, जगत को सिखाए, जगत को समझाए। उन्होंने जो कुछ कहा कहने सुनने समझाने के लिए, उनके पास रहा तो केवल एक मन रहा। वो मन से ही कहते रहे, मन से ही बोलते रहे और उसी को समझाते रहे। तो याद रखो, वो मन सबके पास है, जो संतों के पास था वो आपके पास भी है, वो ईश्वर ने आपको भी दिया है। इसलिए अपने मन को संभाल लो, मन के हारे हारे है, मन के जीते जीत। इसलिए इस मन को जिसने संभाल लिया, जिसने समझाने में, सिखाने में, पढ़ाने में जो अपने मन को सफल हो गया, वो संसार में सफल हो गया, विश्व में सफल हो गया, उसने विश्व जीत हासिल कर लिया जो अपने मन को सिखाने समझाने में सफल हो गया। जो मन के आगे हार गया वो संसार में हार गया, नारायण संसार में हार गया। इसलिए संसार से मत हारो, संसार पर जीत हासिल कर लो, अपने मन को जीत लो। जीतने का स्थान यही है, सत्संग ही है। इसमें ही आकर आप अपने मन की जीत कराकर सदा सदा के लिए सुखी और प्रसन्न हो सकते हैं। यही एकमात्र उपाय है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम और समझाते हुए, कोई कठोर शब्द आपके मन को मेरे शब्दों से चुभा हो, लगा हो, तो मेरा शब्द मुझे वापस दे देना, कोई बात नहीं। और आप लोग प्रसन्न रहें, आनंद में रहें, यही भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।